जयमा, काफ़ी कुछ तो बात हो गई है और अच्छा होगा अगर कोई एक प्रश्न होता तो वो हम लोग ले लेते, लेकिन दो तीन चीज़ें बस। चूँकि हम लोग भारतीय रिनाइसा मतलब भारत के पुनरुत्थान पुनर्जागरण की बात कर रहे हैं, तो दो तीन चीज़ें बिंदु उसकी ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। एक हमारी दृष्टि पास्ट नहीं फ्यूचर की तरफ होना चाहिए, कल इसकी बात हुई, लेकिन पास्ट को डिस्कार्ड नहीं करना है, उसकी स्पिरिट को आगे लेके जाना है। हम अभी भी फॉर्म को पकड़ते हैं, स्पिरिट को भूल जाते हैं, लेकिन सृष्टि का ये नियम नहीं है। पुनर्जन्म में भी यही होता है कि हमको देह त्यागना होता है, देह से जुड़े संबंध त्यागने होते हैं, लेकिन अंदर में जो हमारी प्रगति हुई है, जो प्रोग्रेस हुई है, उसको आगे ले जाना होता है। कभी कभी जो मैंने ऑब्जर्व किया है और प्रश्न भी जो आते हैं मेरे पास, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि हम शेरविंद को एकदम एक वैक्यूम में ला करके, भविष्य है वो, लेकिन कई लोग हैं जो देखना चाहते हैं कि कैसे वो जुड़े हैं श्री राम श्री कृष्ण श्री अरविंद। अपने आप में श्री अरविंद जो ला रहे हैं वो बिल्कुल नया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, किंतु चूंकि वो सनातन धर्म की एक धारा है, खुद उन्होंने उस बात को स्पष्ट किया है, इसलिए यह भी ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को समझें। जैसे कुछ दिन पहले किसी ने एक बड़ी सुंदर बात कही थी कि हम लोग वैसे भी ऑब्जर्व करते हैं, अब श्री अरविंद के योग में भक्ति समर्पण इन सब चीज़ों का बहुत महत्व है, ज्ञान का महत्व है, कर्म का महत्व है, तो लोग पूछते हैं कि इसमें और फिर गीता में ये जो चीज़ें कर रहे हैं तो क्या अंतर है। स्पष्ट होनी चाहिए हम लोगों को कि क्या अंतर है, अंतर है कि नहीं है, लक्ष्य का अंतर है या और भी कुछ अंतर है। तो मैं बस एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि अगर आप रामायण पढ़ें तो रामायण में भक्ति के एक से एक अद्भुत उदाहरण है, चाहे वो केवट हो या हनुमान हो, और भी जितने भी हैं, सबकी भक्ति अद्भुत है। तो भक्ति कहाँ से आती है? चैत्य से आती है। तो रामायण में एक प्रकार से एक चैत्य के जागरण का और विवेक के जागरण का, जो स्वयं राम जी एम्बॉडी करते हैं बुद्धि, इसके जागरण की बात है। अब श्री कृष्ण उसी भक्ति को और उसी बुद्धि को एक अलग लेवल पर ले जाते हैं, ऐसा नहीं कि वो डिस्कार्ड कर रहे हैं, हमारे यहाँ ये नहीं है कि वो डिस्कार्ड हो गया, वो एक अलग लेवल पर ले जाते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि अभी भी बहुत लोग हैं जो ये समझते हैं कि बस राम पर सारी चीज़ें रुक गई हैं, और इस प्रकार से हम लोग क्या कर रहे हैं, वही भूल दोहरा रहे हैं जो हम इस्लामिस्ट करते हैं कि एक जगह पर चीज़ें रुक गई हैं, रुकती नहीं है, वो आगे बढ़ रही हैं। तो भक्ति कर्म सिद्धांत ज्ञान तीनों को श्री कृष्ण एक अलग लेवल पर ले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो हम भक्ति रामायण में देखते हैं और जो भक्ति हम राधा में देखते हैं संपूर्ण सरेंडर की, वो एक अलग भक्ति है। उसी प्रकार से कर्म सिद्धांत में जो हम देखते हैं कि हनुमान की सेवा, और जब अर्जुन को श्री कृष्ण कर्म सिद्धांत बताते हैं तो वो बिल्कुल एक स्टेप आगे की ओर ले जाते हैं। फिर जब श्री अरविंद आते हैं तो हम देखते हैं कि वही भक्ति जो रामायण में बड़ी सुंदर है, जैसे भक्ति का पहला किरण आती हो, बहुत सुंदर भक्ति है, श्रीमद् भगवद गीता श्री कृष्ण उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं, परंतु माँ क्या कहती है, कंप्लीट सेल्फ गिविंग। कहाँ तक? केवल अंदर नहीं, अंदर बाहर, शरीर नक्षिक। तो अब उन्होंने उसी भक्ति को एक उस कंप्लीटनेस की ओर ले गई। उसी प्रकार से हम देखते हैं कर्म, मां कहां तक है, वर्क इज वर्शिप फॉर द डिवाइन। यहां तक कि देह का कर्म, एक्सरसाइज, सब चीजें जो गीता में हिंटेड है, श्री कृष्ण श्री अरविंद उसको बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। ज्ञान, तो आत्मज्ञान उतना काफ़ी नहीं है, वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आत्मज्ञान के आगे समग्र ज्ञान, समग्र माम, भगवान के एक एक एस्पेक्ट में, विज्ञान में, कला में, हर चीज़ में भगवान का ज्ञान है, और उसको हमको प्रकट करना, समझना, उससे अंतस्फूर्त होना, इंस्पायर्ड होना और उसको जीवन में प्रकट करना, तो वही उस धारा को आगे ले जाते हैं और आगे ले जाके अब यहाँ पे उनकी जो नई चीज आती है कोई नई चीज जोड़ देते हैं। तो इन तीनों को मैं इस तरह से देखता हूँ, क्योंकि लोग अक्सर पूछते हैं कि श्री राम अगर आपको चैत्य की भक्ति जागृत करनी है तो श्री राम रामायण अद्भुत है, और स्पिरिचुअल चेतना में जागृत होना है तो श्री कृष्ण और गीता और अतिमानस ये श्री अरविंद लाते हैं। तो इसमें एक कंटिन्यूटी जब दिखती है तो बहुत लोग इस चीज़ को ज़्यादा समझ पाते हैं। कुछ लोग हैं जो तैयार हैं डायरेक्टली, तो ये भारत के पुनर्जागरण में अभी तक पूरी तरह श्री अरविंद को जोड़ा नहीं गया है। मेन स्ट्रीम की बात मैं कर रहा हूँ, हम लोगों की नहीं, हम लोग तो यहाँ पर सब ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जुड़ गए हैं श्री अरविंद से, लेकिन मेन स्ट्रीम में नहीं जोड़ा गया है। और मैं तो चूंकि सब लोग सामने, इसका एक प्रमाण, सबसे बड़ा प्रमाण स्वयं अयोध्या में है, साधनालय की बात कर रहा हूँ। अभी तक वे लोग जो राम की भक्ति कर रहे हैं उनको यह नहीं समझ आ रहा है कि श्री अरविंद ही फ्यूचर है, वही जो काम श्री राम ने प्रारंभ किया और श्री कृष्ण आगे ले गए वही श्री अरविंद परिसमाप्ति पर ले जा रहे हैं। ये बात नहीं समझ आ रही है। क्यों समझ नहीं आ रही है इस पर हमको विचार करना है। या तो हम लोगों के समझाने में कहीं गैप है, या एक ब्लाइंड रेजिस्टेंस है। ब्लाइंड रेजिस्टेंस भी होता है जब कोई नई चीज आती है, श्री राम जब आते हैं तो एक रेजिस्टेंस होता है उस समय की मनुष्यता में उनके प्रति, और श्री कृष्ण जब आते हैं तो उनके प्रति भी रेजिस्टेंस होता है। माता जी ने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है, ईच अवतार इज द फोररनर ऑफ ए मोर कम्प्लीट फ्यूचर रियलाइजेशन। देखिए मोर कम्प्लीट, बट मैन हैव ए टेंडेंसी टू टर्न टूवर्ड द अवतार ऑफ द पास्ट, विच इज ओके, फ्रीडम है, लेकिन आगे लिखते इन अपोजिशन टू द अवतार ऑफ द फ्यूचर। एग्जैक्टली यही समस्या कई जगहों पर मैं देखता हूं कि राम है तो एज इफ श्योरबिंदो इज इन अपोजिशन टू लॉर्ड राम। कितनी विचित्र बात है, वो एक कदम आगे ले वही काम, क्योंकि हमारे यहाँ ये इवोल्यूशन की निरंतरता है। वी डोंट बिलीव कि एक जगह पर जाके कालखंड में चीजें स्टक हो गई। श्री अरविंद स्वयं कहते हैं कि सुप्रमेंटलाइजेशन ही एंड नहीं है, इसके आगे भी और कुछ आना है। तो ये जो एस्पेक्ट है, और वो हम स्पिरिट को पकड़ेंगे तब आएगा, फॉर्म को पकड़ने से नहीं आएगा, क्योंकि फॉर्म तो बाहर की चीज है और हम लोग उसमें रुक जाते हैं। दूसरी चीज है कि हमारे स्क्रिप्चर्स में बहुत कुछ है, सुंदर चीजें हैं जिससे लोग जुड़े हुए हैं, भारतवर्ष की एक एवरेज हिंदू, लेकिन उसका जो एक अर्थ है, उसका एक डीपर सेंस है जो हमको भविष्य की ओर संकेत करता है, उससे भी उसको जोड़ना है, और इसमें भी काम करने की आवश्यकता है। कल बात हो रही थी श्री अरविंद कैसे पैराबल ऑफ महादेव एंड सती, अगर आप इस कहानी को देखें तो पूरी तरह ओल्ड क्रिएशन और न्यू क्रिएशन की बात है उसमें। ओल्ड क्रिएशन को स्वयं को तप रूप में यज्ञ को अर्पित करना होता है, माता सती रिप्रेजेंट्स दैट, और फिर उनकी जो बॉडी है, देह है, मृत देह है, उसको स्वयं भगवान विष्णु काटते हैं चक्र से। ये कहानी हम सब जानते हैं, उनके शक्तिपीठ बने जगह जगह। तो वो देह को ऐसा काम करने की क्यों जरूरत है, क्योंकि शिव वहीं पर रुक जाते हैं, विलाप करके घूम रहे हैं, लेकिन उनकी जो स्पिरिट है वो फिर माता पार्वती के रूप में प्रकट होती है, तप करके, योग करके, यज्ञ के द्वारा। तो ये बहुत सारी कहानियां हैं। श्री कृष्ण की कहानी जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि वो लेकर के जा रहे हैं ओखले को, और श्री अरविंद ने उसका एक बिल्कुल नूतन, माताजी से किसी ने पूछा था कि श्री कृष्ण की कहानी क्यों, क्या रिप्रेजेंट करती है, तो माताजी कहती हैं कि डू यू नो व्हाई ही इज ऑलवेज शोन एज ए चाइल्ड। तो ये हमारे चैत्य की कहानी है विच इज कॉन्स्टेंटली मूविंग फॉरवर्ड। वो एक कंस के जेल में पैदा होते हैं, कंस कौन बनता है, हमारे ही अहंकार कंस है, और ये टेंडेंसी आ रही है अब इसको ऐसे नए ढंग से समझने की, लेकिन हम लोग जो श्री अरविंद से जुड़े हैं हमको उस प्रकाश में इन चीज़ों को लाना चाहिए। और फिर उसके सामने कैसी कैसी कठिनाई आती हैं, वो उससे बाहर निकलता है। नव दुर्गा की जो कहानी है, सबके सब बहुत गूढ़ गहन अर्थ है। तो उसके अंदर छिपे ही सत्य को बाहर लाने की चेष्टा करनी है। बहुत सारी कहानियों में, टॉक्स में मैंने ये प्रयास किया है और अवेलेबल, ये सारी कहानियाँ शिव जी की, कृष्ण जी की, श्री राम की, पूरी इवोल्यूशन की कहानी है। जब हम मंकी मैन से थिंकिंग मैन की ओर जा रहे हैं तो वही बात कर, इवोल्यूशन की कहानी है। माँ सीता का धरती के गर्भ में चला जाना, भूमि जा है, यूनियन ऑफ मेटीरियल नेचर विद द डिवाइन सोल, वही कहानी है। लेकिन वो कहानी अधूरी है। राम की जो अधूरी कहानी है उसको श्री अरविंद पूर्ण कर रहे हैं। वही कहानी ना, मेटीरियल नेचर है, भूमि जा है, और वो श्री राम अवतार डिवाइन सोल है, और दोनों का मिलन संभव नहीं हो पाता है। क्यों संभव नहीं होता? मनुष्य तैयार नहीं है, राक्षस है जो रेजिस्ट कर रहा है, अर्थ नेचर वो भी पूरी तरह, तो वो अंत में वापस बुला लेती है। और श्री अरविंद क्या कहते हैं, मेटीरियल नेचर और डिवाइन का कंप्लीट यूनियन, वही चीज शिवलिंग के अंदर है। माँ ने इसके और भी संकेत किया है, तो इस पर भी एक काम करने की जरूरत है। बहुत कुछ है जो ऑलरेडी है श्री अरविंद सीमा के लिटरेचर में, वृंदावन के बारे में वो बताते हैं। तो अगर आप वर्णन सुनेंगे वृंदावन का तो ऐसा लगेगा कि न्यूज क्रिएशन हाउस ऑफ द स्पिरिट इसकी बात हो रही है। एक तो ये है, लेकिन एक और चीज़ है जहाँ हमको ये क्लियर होना है कि जब हम पास्ट से जोड़ते हैं तो हम फॉर्म से तो नहीं जोड़ रहे हैं। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब बात होती है श्री कृष्ण श्री अरविंद के अंदर समा गए तो हम लोग इमिजिएटली, हमारे मन में श्री कृष्ण की एक इमेज है और वही इमेज हम प्रोजेक्ट करते हैं। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, जब श्री अरविंद से पूछा गया कि आपको जो श्री कृष्ण मिले थे अलीपुर जेल में और आगे, ये कौन से वाले श्री कृष्ण हैं, ये गोपियों वाले श्री कृष्ण, हम यही दिखाते हैं ना, मोर पंख और बांसुरी बजा करके श्री कृष्ण जा रहे हैं, तो वो कहते हैं नो, इट वॉज द श्री कृष्ण ऑफ द कुरुक्षेत्र। और आप देखिए श्री अरविंद जब कर्म योगिन पब्लिश करते हैं तो उसमें भगवत गीता का वो प्रथम, जिसमें वो बैठे हुए हैं अर्जुन श्री कृष्ण के रथ चला रहे हैं। तो लेकिन कहीं पर भी हम देखते नहीं हैं, जहाँ श्री अरविंद और श्री कृष्ण की बात होती है तो सदैव वो मनमोहना गोपाल, सुंदर है वो भक्ति, लेकिन अभी सामने महाभारत खड़ा हुआ है। तो श्री कृष्ण का वह रूप, और वह रूप जो है वो बड़ा भयानक है, उसको देखना मनुष्य के लिए बहुत कठिन होता है, क्योंकि वो तो सब कुछ बाहर का रूप डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो ये भी आवश्यक है कि हम कहीं बिल्कुल जब पास्ट से जुड़ रहे हैं तो हमको ये स्पष्ट होना चाहिए। कुछ समय पूर्व ये बात हो रही थी, अब हम लोग जन्माष्टमी मनाते हैं, अब श्री अरविंद आश्रम में अगर आप जन्माष्टमी मना रहे हैं तो कल को कोई आपको अगर क्राइस्ट का जन्मोत्सव या मोहम्मद जी का जन्मोत्सव मनाएगा तो आप कैसे मना करेंगे उसको? तो हमको उसका इनर स्वरूप लेना है, श्री कृष्ण के जन्म का क्या अर्थ है, पर हम लोग केवल बाहर की चीज पकड़ रहे हैं। ये बार बार माताजी ने क्या किया, सबको नया रूप दिया। कई बार लोग पूछते हैं कि दुर्गा जी, दुर्गा पूजा पर माँ का दर्शन, चार दिन है ना जिसमें माँ की कुर्सी बाहर लाते हैं जिसपे माँ दर्शन देती थी, काली पूजा, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा, चार दिन। तो अब कई बार डिवोटीज के अंदर भी ये टेंडेंसी होती है कि उस दिन वो कोई दुर्गा का कोई स्वरूप, कोई अष्टभुजा देवी, दशभुजा देवी, पर माँ क्या हमें बता रही हैं? माँ बता रही है सारे जो रूप हैं भिन्न भिन्न वो सब एक डिवाइन मदर में समाहित हैं। और माँ ने ये कहा भी है, व्हेन यू वर्शिप दुर्गा इट कम्स टू मी। वो ये सत्य हम सबको बता रही हैं क्योंकि वही दर्शन दे रहे हैं उस भाव को धारण करके। पर हमारी एक टेंडेंसी है पास्ट भाव में जाने की और पास्ट फॉर्म्स में जाने की। ये वी ऑल हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है, बहुत जिम्मेदारी का काम है. और लास्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसके बिना ये सब अधूरा रहता है, हमारे ही अपने चरित्र में ये चीज़ें झलकनी चाहिए. हम अगर बोलते हैं कि माँ श्री अरविंद की डिवोटी हैं और हमारा काम, ये नहीं, यहाँ की बात नहीं, हम सब प्रयास करते हैं, लेकिन इन जनरल मैं बता रहा हूँ, ये मास मूवमेंट नहीं है. मास मूवमेंट की समस्या क्या होती है, वो एक रिलीजन बन जाता है. और श्री अरविंद बार बार बताते हैं कि आई हैव नॉट कम हियर टू फॉर्म ए न्यू रिलीजन और ए न्यू टीचिंग. रिलीजन बनने से क्या होता है, बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे, हजारों लाखों, लेकिन जो रियली उसको फॉलो करने वाला व्यक्ति है वो नहीं होगा. श्री अरविंद ये नहीं चाहते हैं, वो इसको स्पष्ट करते हैं, आई डोंट वॉन्ट टू गिव माई सैंक्शन टू द ओल्ड फियास्को, टू पुट द ओल्ड वाइन इन ए न्यू बॉटल, ये नहीं करने आए हैं. और इसीलिए ये उस तरह का मास मूवमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें एक सीरियस काम है. और वो काम अगर बहुत सारे जुड़ गए लेकिन कोई तैयार नहीं करने को, तो ये रिलीजन्स में यही होता है. आप किसी भी रिलीजन, इंक्लूडिंग हिंदू रिलीजन, हम लोग पूजा पाठ करते हैं, सब करते हैं, लेकिन घर में हम श्री कृष्ण के मंदिर जाते हैं, घर में कंस के जैसा व्यवहार करते हैं, रावण को जलाते हैं, लेकिन अपनी वाइफ के साथ हम वो व्यवहार करते हैं जो रावण मंदोदरी के साथ करता था. दैट विल नॉट डू. ये हिपोक्रेसी और इनसिंसेरिटी का युग नहीं है. इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सब जब बाहर निकलें तो हमारे कर्म, हमारी चरित्र, हमारी वाणी, एक छोटी सी प्रैक्टिस जिसके साथ आई विल स्टॉप हियर, हम कहते हैं कि एक नया सत्ययुग आ रहा है, एज ऑफ ट्रूथ. हम सब बहुत प्रसन्न हैं और बहुत लोग इसकी बात कर रहे हैं आजकल, सत्ययुग कब आएगा, सत्ययुग कब आएगा. तो एक बार मेरे से किसी ने पूछा कि सत्ययुग कब आएगा, कब आएगा सत्ययुग. तो एक तो है कि हम लोगों का तो सत्ययुग प्रारंभ हो गया है 29 फरवरी 1956 से. तो मैंने कहा हाँ, लेकिन एक कंडीशन है. कंडीशन क्या है, सत्ययुग आएगा तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि मनुष्य सच बोलना शुरू करे. अब देखिए ये कंडीशन कितनी कठिन है. अगर हम अपने हृदय पर हाथ रख के देखें, कितनी बातों में हम छोटी छोटी बात में झूठ बोलते हैं. मतलब झूठ बोलने का कोई लॉजिक नहीं है, पर फिर भी ऐसी ऐसी जगह जहां कोई जरूरत नहीं है, जरूरत कभी नहीं होती झूठ की, लेकिन झूठ बिकम्स ए वे ऑफ लाइफ इस हद तक कि आप भरोसा नहीं कर सकते हो कि आप कहीं जाना है आपको रास्ता, और किसी से आप पूछ रहे हो कि मुझे कहाँ जाना है, तो आपको ये नहीं कहेगा मुझे नहीं मालूम है, वो आपको कुछ बता देगा, क्योंकि उसका गौरव इसमें है, मैं नहीं जानता ये नहीं बताएगा, इधर से चले जाओ उधर होगा, ज्यादा दूर नहीं है, 5 मिनट का रास्ता है, आधा घंटा का रास्ता है, उसको खुद नहीं मालूम है. क्या जरूरत है, आप बोल दीजिए कि मुझे नहीं मालूम है, आई डोंट नो द वे, इसमें क्या है. तो सत्ययुग की हम बात करते हैं और यही बात हो रही है, लेकिन झूठ कदम कदम पर झूठ बोलते हैं. तो ये दिखाता है कि अभी कितनी दूरी है वो चीज जो शेरविंद यहाँ लाए हैं प्रसाद के रूप में, और वह जो मैनिफेस्ट करने के लिए हम सबको उन्होंने पिकअप किया है, तो कितना काम जरूरी है. ये योग सिंसेरिटी का योग है, एक नया रिलीजियस मास मूवमेंट नहीं है. और ये हो नहीं सकता, क्योंकि इवोल्यूशन सदैव पहले कुछ लोगों में होता है. श्री अरविंद ने केवल 100 लोगों की बात की है, और इसका इसको किताबें भी हैं इस पर, 100th monkey, 100 मनुष्यों के अंदर सच्चाई से अगर ये चीज आ जाए तो बाकी विल फॉलो, वो चेंज होगा, कैस्केट करेगा. उनको बताने की जरूरत नहीं है श्री अरविंद हैं, वो लाए हैं, ये लाए हैं. अगर आप जिएंगे तो अपने आप उसका प्रभाव होता है. तो ये योग बहुत ज़्यादा मेंटलाइज करके, बोल के, ऐसे करके, किताबें छाप के नहीं होता है. ये योग होता है अपने ही अंदर सच्चाई में उसको जीने से. और हर व्यक्ति जो वो इसको जीता है, अपने आप वो इस संसार में बहुत बड़ा काम कर रहा है माँ श्री अरविंद का. माँ ने एक जगह लिखा है, विन योर लिटिल विक्ट्रीज. माँ कहती है तुम अगर छोटी सी भी विजय अपने ऊपर प्राप्त करते हो, छोटी सी भी चीज में, तो उसका परिणाम पूरे संसार में होता है। तो यहाँ बहुत कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं है, एक यहाँ पर तो जरूरत है उस सत्य को स्वयं में जीने की। ये बात मैं इतनी बार देखता हूँ इसलिए क्योंकि अभी सब लोग अयोध्या गया, उसके तो पहले मैं गया था, मतलब पहले भी गया हूँ लेकिन वहाँ गया था, राम मंदिर भी देखा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि लोग अभी भी श्री राम की स्पिरिट को भी नहीं जानते हैं। श्री कृष्ण श्री अरविंद तो आगे की बात है। और ये मैं बात कभी निराशा से नहीं, क्योंकि निराशा तो कभी सवाल ही नहीं है, क्योंकि जो श्री अरविंद ने कहा है वो होगा ही होगा। ये इसलिए कि हम और सच्चे बने, बस हम सच्चे नहीं हैं अभी। वो केवल एक रामनवमी के दिन सब जगह चला जाता है, राम जी का कुछ 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 जाएगा आपका, लेकिन उसके बाद हम लोग उसको जीते नहीं हैं। इवन श्री राम के जो चरित्र है कि किसी को प्रॉमिस किया है कुछ, उसका कोई मतलब नहीं रहता है, तो फिर कहाँ। तो लेट अस बी फ्यू बट सॉलिड। बार बार अंत में श्री अरविंद वंदे मातरम में कहते हैं ये, व्हाट द मदर वांट्स, माँ क्या चाहती है हमसे, कहती टू बिकम रियल स्टील फॉर द, उनका जो पहिया है रथ का उसके लिए सॉलिड स्टील वुड जो उनके चक्का चलेगा, माँ ये चाहती है, सॉलिड पीपल, सिंसियर पीपल, सच्चे लोग हो और सॉलिड हो। ये नहीं कि अभी थोड़ी बात हुई उसमें रोने लगे, थोड़ा उधर जाके रोने लगे। सो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसी की ओर संकेत करूँ ना। भारत का पुनरुत्थान किताबों के पढ़ने से, ये सब एक बेस है, जरूरी है, लेकिन वो तब होगा जब हम भारत की आत्मा को जिए अपने अंदर। माँ ने इसका एक सिंपल एक वन लाइन फॉर्मूला दिया है, फाइंड योर साइकिक बीइंग एंड लव द सोल ऑफ इंडिया फ्रॉम दैट साइकिक बीइंग। ये यदि हम कर पाए तो अपने आप बाकी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, क्योंकि साइकिक बीइंग इटसेल्फ विल गाइड अस कि किधर ले जाना है। जय माँ वंदे मातरम।